மாப்பரம் பார் பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் பார் பிரபுஜி தேரி மே பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் பார் பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் பார் பிரபுஜி தேரி மே பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் பார் 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 பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் 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 பிரபுஜி தேரி மே பிரபுஜி தேரி மே மாப்பரம் 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 பிரபுஜி தேரி बुद्धि प्रबुद्धि एवं सबुद्धि की चर्चा चल रही है साक्षर विभूति योग नामक दसवें अध्याय के अंतर्गत जो बुद्धि राम राम जपने के लिए प्रेरित करी वह सदबुद्धि है ऐसी बुद्धि एक न एक दिन परमेश्वर से योग करवा के रहे जो बुद्धि दूसरों के दोष देखने के लिए प्रेरित करती है उस दुर्गंधमय काम में जोड़ के रखती है उसे दुर्बुद्धि कहा जाता है जो बुद्धि अपने सुधार की ओर आपकी उंगली को घुमाती है वह सदबुद्धि है आज एक एक उदाहरण परमेश्वर की पकड़ी पूरी हो जाए एक एक उदाहरण इन तीनों की देखते हैं एक महिला एक संत महात्मा के पास गई है जाके कहती है बाबा मेरा जीवन बहुत दुखदायी है शांत जीवन है मेरा विवाह के बाद मैंने एक दिन भी सुख का नहीं देखा और मुझे कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं लगती कि मुझे शांति मिलेगी बाबा गंभीर हुए पूछा बेटी बात क्या है क्या बात है क्या शांति का कारण है क्या तेरे दुख का कारण है मेरे पति शराबी हैं रोज रात को शराब पी के आते हैं अनाप शाप बोलते कटुवानी मुख से दुर्गंध आती है खाने के लिए इंतजार करती हूं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, गुस्से में दूर फेंक देते हैं, कहीं खा के आए हुए होते हैं, मुझे कोई पता नहीं। उनको ऐसी हालत में देख के तो मैं भी बागड़ी हो जाती हूं, मैं भी बोलती हूं मुझे भी बहुत गुस्सा होता है, मुझे क्रोधित देख के और क्रोधित होता है तो मेरी पिटाई शुरू कर देता है। ऐसी ही मेरी जिंदगी व्यतीत हो रही है, मेरे लाख समझाने पर भी मैं समझता नहीं। देवियों, एक आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कभी पति के लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना कि मैं अपने पति को बहुत समझा रही हूं, कोई पुरुष इसे पसंद नहीं कर सकेगा, ये शोभनीय भी नहीं है। एक नारी के लिए, पत्नी के लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं। वैसे भी ये शब्द अहंकार का चिन्ह है, ये शब्द साधारण शब्द नहीं है, तनिक विश्लेषण करके देखना, कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करना, मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की ना। आप उनसे निवेदन कर सकती हैं, आप उनसे बातचीत कर सकती हैं, लेकिन ऐसा शब्द कभी नहीं प्रयोग करना कि मैंने अपने पति को बहुत समझाया, वह समझाई, कोई पुरुष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बाबा पूछते हैं, ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। मैंने अब उपवास रखने शुरू किए हैं, कुछ दिनों से उपवास रख रही हूं, हो सकता है कुछ इस उपवास का, इस व्रत का कोई प्रभाव पड़े। कितने दिन हो गए हैं उपवास करते हैं? बाबा ने पूछा, कहा लगभग एक सप्ताह हो गया है उपवास रखते हुए। अच्छा, क्या इससे तेरे क्रोध पर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं बाबा, क्रोध फर्क नहीं, पर जैसे ही शराब पी के आता है मैं क्रोध हो जाती हूं। तो महात्मा उसे समझाते हैं, देवी तेरे समझाने से और उपाय करने से, उपवास से यदि तेरे क्रोध पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो तू कैसे अपेक्षा कर सकती है कि तेरे पति के व्यवहार पर, स्वभाव पर फर्क पड़ेगा? देवी को समझाते हैं, यदि स्थिति ठीक करनी है, घर के हालात, घर का वातावरण ठीक करना है, मेरी माता सज्जनों सब सुन, यदि आप चाहती हो कि आपका घर नरक ना रहे, स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप दूसरों में सुधार की अपेक्षा नहीं रख सकते और नरक होगा भी नहीं। बाबा ठोक जाके कहते हैं, तू सब कुछ करके देख ले, जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारेगी तब तक तेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति देवियों जिनकी इस प्रकार की आदत हुआ करती है, उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते, अपनी बुराई उन्हें दिखाई नहीं देती, वह आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें दोष निकालते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनमें दोष निकालेंगे, हालात में दोष निकालेंगे, अपने में उन्हें दोष दिखाई नहीं देते। जो बुद्धि देवियों अपने दोष न देखने दे, पर दोषों में व्यस्त रहे, देखने में व्यस्त रहे, उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाता है। ये आपको शांति देगी, उदासी देगी, बेचैनी देगी, परमात्मा से विमुख करके रखेगी और अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त, नरक की यातनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल पाएगा। बुद्धि क्या है? एक दुर्बुद्धि की उदाहरण आपने देखी, सुधार अपना करना है। मैं तो ऐसा मानता हूं देवी सचों, जिंदगी में इतना ही सिलेबस मिला हुआ है, व्यक्ति दूसरों के सुधार की जिम्मेदारी ना दे, ये परमात्मा ने हर एक को नहीं दी हुई, लेकिन हर एक को अपने सुधार की जिम्मेदारी तो दी हुई है। अपने आप को सुधारो तो यूं समझ लीजिएगा कि आपका जिंदगी का जो सिलेबस है वह पूरा हो गया, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपका स्वभाव शुद्ध होगा, तो समझ लीजिएगा आपने बाजी ही मार ली। बच्चे लोगों, महिलाओं बहुत टीबी नहीं देखनी, ये रोग है टीबी, इसको संत महात्मा कहते हैं, ये टीबी नहीं है टीबी है, टीबी ऐसा रोग है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसे देखना नहीं, जरूर देखो, लेकिन वही देखो जिनसे आपके विचार मलिन ना हो। इतना संयम तो राम राम जपने वाले पर होना चाहिए, क्या मुझे देखना है और क्या नहीं देखना है। सारा दिन बच्चा टीवी के आगे बैठा रहेगा तो वह गंदगी भी देखेगा, कुछ एक आदि अच्छी चीज आएगी तो वह भी देखेगा, तो फिर गंदगी का प्रभाव जो मन पर पड़ता है वह तो सत्यानाश करके रहेगा, वह आपके विचारों को मलिन करके रहेगा, वह आप अपने विचारों को बहुत दूषित करके एक प्रदूषण का वातावरण आपके दिमाग में बन जाएगा। जितना मर्जी आप राम राम जप लो, ये इतनी जल्दी प्रदूषण ठीक नहीं होने वाला। इतने गहरे संस्कार हुआ करते हैं इन कुविचारों के, इन दुर्विचारों के, ये कोई अभी के नहीं है, ना जाने फिर कब के, जो सोए पड़े हुए होते हैं पिछले जन्मों के वो भी जागृत हो जाते हैं, आप लेके आए हुए होते हो तो मानो आपके अंदर इन दुर्विचारों का भंडार सा बन जाता है, फिर जाप क्या करेगा वहां पर, कितना जाप कर सकोगे आप एक जीवन में कि ये आपके दुर्विचार ठीक हो जाए। अतएव संयम रखो देवियों, क्या देखना है मुझे, कितना देखना है, क्या नहीं देखना, बस बुद्धिमत्ता क्या है। ऐसा क्षण एक राजा के तीन पुत्र हैं, एक को उत्तराधिकारी वह चुनना चाहता है, प्रथा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनना चाहिए, लेकिन राजा के मन में कुछ और है, मैं योग्य को उत्तराधिकारी बनाऊंगा ज्येष्ठ को नहीं। ज्येष्ठ नलायक भी हो सकता है, बड़ा नलायक हो सकता है, वह मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। खोज शुरू कर दी, किसी संत महात्मा से संपर्क किया, उनसे पूछा, बाबा मेरी समस्या है ये, मेरे तीन पुत्र हैं, मैं एक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, कैसे चुनाव करूं। युक्ति बताते हैं संत महात्मा, राजा को युक्ति बताते हैं और उसके अनुसार राजा तीनों पुत्रों को बुला के कहता है, भाई ये 100 रुपया लो, उस वक्त की बात होगी जब 100 रुपया काफी होता होगा, ये 100 रुपया लो, आप तीनों के अपने अपने महल हैं, 100 रुपये की ऐसी सामग्री खरीदो कि आपका सारा का सारा महल भर जाए। कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा आपके महल को देखने के लिए। पहले व्यक्ति ने सोचा, ज्येष्ठ पुत्र 100 रुपये की क्या ऐसी चीज आएगी कि इतना बड़ा महल भर जाएगा, स्पष्ट है मेरे पिता संकेत दे रहे हैं, जुआ खेल, इस पैसे को मैं बढ़ाऊं, इस पैसे को बढ़ाने से फिर अनेक सारी वस्तुएं खरीद के तो अपने महल में भरूंगा तो ही भर सकेगा, पर 100 रुपया भी हार गया, जुआ खेल, महल खाली का घर। मजरे ने सोचा, इस 100 रुपये की क्या चीज आएगी, गंदगी के सिवा और तो कुछ नहीं, कूड़ा करकट शायद 100 रुपये का इतना आ जाए कि उससे महल भर जाए, खरीद लिया और महल भर भी गया, कूड़ा करकट से उसका महल भर गया, 100 रुपये का इतना कूड़ा करकट खरीद लिया। तीसरे ने भी कुछ किया, समय आ गया है, राजा साहब तीनों के महल देखने के लिए गए, पहले कम महल खाली था, डिस्कार्ड किया उसको, तो कुछ किया ही नहीं है, दूसरे ने गंदगी भरी हुई थी बालों, वह भी गंदा है, मलिन विचारों का है, इसके अंदर कोई सात्विक विचार उत्पन्न नहीं हुए, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हुए, अतएव ये भी मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। तीसरे के पहले में गए, सबसे छोटा था, क्या देखते हैं, 100 रुपये में क्या खरीदा है उसने, मोमबत्तियां खरीदी हैं, दीप खरीदे हैं, सारे का सारा महल प्रकाश में हो गया हुआ है, धूप अगरबत्ती खरीदी है, जगह जगह पर धूप अगरबत्ती सारा का सारा महल प्रकाश से भरा पड़ा है एवं सुगंध से भरा पड़ा है। तू ही है बेटा मेरे राज्य का उत्तराधिकारी। ये बुद्धिमता है, ये बुद्धि योग नहीं है, ये बुद्धिमता है। वर्ल्डली वॉइस, बुद्धिमता अर्थात वर्ल्डली वॉइस। एक राज्य पाने के लिए उसकी बुद्धि ने इस प्रकार से काम किया। कल आपसे अर्ज की जा रही थी, गीता जी के तीसरे अध्याय में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है यज्ञार्थ कर्म करने के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए, अर्थात निष्काम कर्म करने के लिए। सकाम नहीं, यज्ञ भी हो लेकिन सकाम भी ना हो, उत्कृष्ट यज्ञ ना हो, धन द्रव्य पाने के लिए यज्ञ ना हो, अपनी मनोकामनाएं संसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपनी यज्ञ ना हो। इसलिए गीता जी का यज्ञ बड़ा अलग यज्ञ है। सामान्य हवन इत्यादि करना गीता जी का यज्ञ नहीं है, निष्काम कर्म गीता जी का यज्ञ। आज एक राजा के 100 पुत्र हैं, उसकी भी यही समस्या है, किसी एक को उत्तराधिकारी बनाना है। राजा बहुत समझदार है, अतएव क्या किया है, कहा बेटा कल सारे के सारे प्रीति भोज करेंगे, इकट्ठे बैठ के आप खाना खाओगे, यज्ञशाला कहिए पाकशाला कहिए किसी में भी यही बैठ के इकट्ठे भोजन। बढ़िया भोजन बनाया राजा ने, हुक्म दिया मेरे पुत्रों ने भोजन करना है, बढ़िया से बढ़िया भोजन, स्वादु से स्वादु भोजन 100 के लिए तैयार कर दिया। थालियां आगे परोस दी गई है, जैसी थालियां आगे परोसी हैं साथ ही साथ शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए हैं। शिकारी कुत्तों को देख के, शिकारी कुत्तों का तो एक ही काम है भौंकना और काटना, भौंकना और काटना, भौंकना और काटना। अतएव सभी के सभी राजकुमार अपना खाना छोड़ के तो भाग गए, सबकी भूख प्यास खत्म हो गई, उड़ गई। कौन अपने आप को कटवाने के लिए बैठा है, रोटी बाद ही खा लेंगे, कहीं और जाके खा लेंगे, ना सही। सबके सब भाग गए, एक को छोड़ गए, वे भी सबसे छोटा है। राजा साहब ने सबको बुलाया, क्यों बेटा भोजन कैसा था, कहा हमने तो खाए नहीं, भूखे उठे हैं, क्या बात। राजा साहब थालियां आगे रखते ही शिकारी कुत्ते आ गए, वे हमारी तरफ भागते भागते आ रहे थे, इतने कुत्ते थे उन्हें संभालना मुश्किल, मानो वे काटेंगे हमें, खाएंगे हमें, तो हमने खाना छोड़ के भागने का ही सोचा और हम सब भाग गए। पिताश्री मैंने खाना खाया है, सबसे छोटा बेटा, मूर्ख कहेगा पागल है क्या, क्या तुम्हें डर नहीं था कुत्ते काटते, नहीं। फिर क्या किया तूने, कहा पिताश्री जैसे को कुत्ते मेरे सामने आते थे, मैं एक ग्रास उठाता था, आपकी रोटी तोड़ता था, पूरी जो कुछ बनाई हुई थी उनके आगे फेंक देता था, कुत्ता खा के भाग जाता था, चला जाता था, मैंने आराम से खाना खाया। पिताश्री, वह छोटा बालक कहता है, पिताश्री जो दूसरों की भूख मिटाना जानता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता, जो दूसरों को सुख देना जानता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, जो दूसरों को देना जानता है परमात्मा उसके पास कभी घाटा नहीं पड़ने देता। शाबाश बेटा, ये यज्ञार्थ कर्म है, ये निष्काम कर्म है, इसे गीता जी यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। राजा साहब ने उस छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देवियों सज्जनों, सुख चाहते हो तो उसे बांटना सीखो, परमात्मा आपको बहुत देगा। प्रेम बांटने की चीज, सुख बांटने की चीज, जितना प्रेम बांटो परमात्मा उतना आपको प्रेम और देता है, मालामाल कर देता है। दुख बांट के तो आप सोचो कि आपको सुख कभी मिल जाएगा, तो ये भ्रांति है देवियों, ये कभी नहीं होता, परमात्मा का ऐसा विधान नहीं है। सुख चाहते हो तो सुख बांटो, फिर दुख बांटने पर आप सुख की उम्मीद करो तो ये कभी हो नहीं सकता है, ये परमात्मा का विधान बड़ा अटल है, अटूट है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।